आप तो यहां शहर में हो, आप सच्चे साधु नहीं हो सकते, ये उसका भावार्थ तो ही निकला। लेकिन उसने तो इतने शब्द बोले कि हम आपको नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पाठशाला में पढ़ाया कि सच्चे साधु जंगल में रहते हैं। लेकिन ये भी कोई साधु का लक्षण नहीं हुआ। हो सकता है जंगल में रहने वाले साधु भी रागी हों, और हो सकता है नगर में रहने वाले साधु भी वैरागी हों। स्थान से राग और वैराग्य का कोई संबंध नहीं है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणः, गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। जंगल में भी रागी मनुष्य के अंदर राग पैदा हो जाता है, और घर में भी वैरागी के अंदर वैराग्य ही उमड़ता रहता है। शिव कुमार मुनि की कथा आती है कि उन्होंने घर में रह करके ब्रह्मचर्य का हजारों वर्षों तक पालन किया। अभिराम नाम के एक राजकुमार की कथा आती है कि उन्होंने भी घर पर रह करके कितने समय तक विषय कषायों का त्याग रखा, और फिर आगे चल करके वो दशरथ राजा के पुत्र भरत बने। तो भरत वैरागी थे, घर में रहते हुए भी उनको कोई लगाव नहीं था। उनको राज्य मिला था अयोध्या का, लेकिन उनके अंदर अयोध्या के राज्य की चाह बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए ये सारे जो लक्षण बनाए गए हैं मुनि के, कि जो वन में निवास करे सो मुनि, करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, करते तप शैल यानी गर्मियों में शैल पहाड़ के ऊपर जो तपस्या करे वो जैन मुनि, वो सच्चे गुरु, अथवा तरुतल वर्षा की झड़ियों में, फिर नदी तट पर बीच में लिखा है। नदी तट यानी ठंड के समय जो साधु नदी के किनारे रहते हैं वही सच्चे गुरु, भले कहीं नदी मिले या ना मिले, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा नदी के किनारे अगर सच्चे गुरु हैं तो। मान लो नदी 500 किलोमीटर दूर है और साधु यहां पर विराजे हुए ठंड में, तो वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि नदी के तट पर ही तप करते हैं सच्चे गुरु। ऐसा जो विपरीत लक्षण बनाने वाले लोग हैं उनके लिए ये बातें सब विचारणीय है, कि साधु का स्वरूप इतना सीमित मत बनाओ, बहुत व्यापक है साधु का स्वरूप। फिर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, बरसात की झड़ियां जब लगती है तब वो पेड़ के नीचे खड़े होकर के उस पानी की बूंद जो टपकती है उसकी वेदना को सहन करते हैं। बरसात रुक जाती तो भी पत्तों से तो टप टप पानी गिरता ही रहता है, भयंकर स्थिति होती है उसकी। सिर के ऊपर अगर पानी के ड्रॉप्स गिरते चले जाएं तो व्यक्ति सो नहीं सकता, लाख प्रयास करे अगर पानी के थोड़ी देर बाद ऐसे झपके टप नहीं सो सकता, परेशान हो जाए वो। तो ऐसी तपस्या करने वाले ही सच्चे गुरु हैं। बाकी अगर वर्षा ऋतु में कोई रेगिस्तान में या किसी और स्थान पर जाकर के तपस्या करे तो वहां पर चूंकि वृक्ष नहीं है, तो जो वृक्ष के नीचे तपस्या नहीं करते बरसात में वो सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा लक्षण बनाओगे अगर जैन साधु का, सच्चे गुरु का, तो फिर ये सब अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण, अधूरा ज्ञान खतरे जान, आधा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए गुरु के स्वरूप के बारे में ये विपरीत ज्ञान होने के कारण लोग इस प्रकार सीमित मान लेते हैं। और फिर जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा कि अगर गुरु का ऐसा स्वरूप बनाओगे तो किसी के माथे पर नहीं लिखा कि भावलिंगी है। देखो ये वाक्य क्या लिखे हैं जिनेंद्र वर्णी जी ने, कि किसी साधु के सिर पर यह नहीं लिखा कि भावलिंगी। भावलिंगी का मतलब अंदर से छठे सातवें आदि गुणस्थान वाले। मुद्रा तो वही रहेगी जो द्रव्यलिंगी की है, यानी अंदर का गुणस्थान आंखों से थोड़ी दिखता है, बस इतना ही दिखता है कि इनके पास परिग्रह नहीं है, आरंभ नहीं है, और फिर ये त्यागी है, इतना ही दिखाई देता है आंखों से। बालक जैसी निर्विकार नग्न मुद्रा के धारी हैं, केशलोंच आदि करते हैं, पैदल चलते हैं। मूलाचार में चार चिन्ह दिए हैं जैन साधु के, कैसे पहचानोगे साधु को? आचे लक्कम लोचो वो सट्ट शरीर दाय पड़ी लिहणम। पहला चिन्ह है कि उनका शरीर आवरण से रहित होगा। दिगंबर जैन साधु के शरीर पर कोई आवरण नहीं होगा, यानी वो वस्त्रधारी नहीं होंगे। फिर दूसरा चिन्ह है कि वो केशों का लोंच करेंगे। मस्तक और मुख के जो केश होते हैं चेहरे के, उनका लोंच करेंगे। और सीने आदि स्थानों पर जो केश होते हैं उनको धारण करेंगे। लोच का नियम केवल मस्तक और चेहरे के केशों के लिए है, इनका लोच करेंगे, बाकी शरीर के केशों को धारण करेंगे। ये दूसरा चिन्ह हो गया। तीसरा चिन्ह है कि शरीर की सजावट नहीं करेंगे। घड़ी, खड़ाऊं, मालाएं और ऐसी कोई भी आभूषण आदि वस्तु को धारण नहीं करेंगे, जैन साधु होंगे तो। बाकी अन्य नग्न रहने वाले साधु धारण करते हैं, घड़ियां पहनते, खड़ाऊं पहनते, गले में मालाएं पहनते, जटाएं बढ़ाते हैं। ये सारी स्थिति जैन साधु में नहीं होगी। ये तीसरा चिन्ह है, शरीर की सजावट नहीं होगी। और चौथा चिन्ह है, पिच्छी धारण करेंगे। इन चार चिन्हों के सिवाय आप एक क्षण में और क्या देख सकते हो? यदि ये चार चिन्ह आपको दिखाई देते हैं तो इन चिन्हों को जिनेंद्र प्रतिपादित साधु की मुद्रा मान करके प्रथम दर्शन पर तो नमस्कार करना ही चाहिए। फिर बाद में अगर आपको मालूम पड़े कि ये मार्ग से हट चुके हैं तो फिर आप उनका स्थितिकरण करने का प्रयास करें, अगर क्षमता हो तो। क्योंकि जैन धर्म नमोस्तु तक के सीमित नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि देखो हमने उनको देखा और हमने समझ लिया कि ये शास्त्रों में बताए हुए साधु नहीं है, इसलिए हमने नमोस्तु नहीं किया, निकल गए हम सामने से, बहुत बड़ा तीर मार लिया। नमोस्तु न करना ही जैन धर्म हो गया आपका। ऐसे अज्ञानियों के कारण ही साधुओं का स्थितिकरण नहीं होता, और स्थितिकरण न होने के कारण ही जैन धर्म बदनाम होता है। यहां तक सीमा नहीं है श्रावक धर्म की कि आपने नमोस्तु नहीं किया, बहुत बड़े भारी बन गए धर्मात्मा। नमोस्तु न करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जो नमोस्तु नहीं करने योग्य है उसको नमोस्तु करने योग्य बना देना वास्तव में सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि स्थितिकरण करता है, निंदा नहीं करता। निंदा करने वाला मिथ्यात्वी होता है। तो सच्चे गुरु का स्वरूप बहुत अद्भुत स्वरूप है, आगे चल करके बतलाएंगे। अभी तो यहां ये बतलाया कि कुगुरुओं की सेवा से आपको दूर रहना है, कुगुरुओं से बचना है, क्योंकि कुगुरु पत्थर की नाव है, स्वयं भी संसार सागर से नहीं तैर सकते और अंदर बैठने वाले को तार नहीं सकते। न तैरेंगे न तारेंगे, खुद डूबेंगे और अपना सहारा लेने वाले को भी डुबोएंगे। इसके बाद फिर कुदेव के स्वरूप का वर्णन था कि जो परमात्मा के आसन पर विराजित है। ध्यान से सुनो, कुदेव कौन है? जो परमात्मा के स्थान पर विराजमान है लेकिन राग द्वेष से मलिन है, रागादिक दोष जिनके अंदर विद्यमान है, 18 दोष होते हैं जो सच्चे भगवान में नहीं पाए जाते, जिनके अंदर परमात्मा के स्थान पर विराजमान होने पर भी ये 18 दोष विद्यमान है। अब उन दोषों में एक दोष है पसीना आना। अब वो जो दृष्टांत आपने सुना था कि असुर भागा और आगे बेबी भागे, वरदान देने वाले भागते भागते पसीने से लथपथ हो गए, तो ये पसीना आना परमात्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन उनका स्थान परमात्मा का स्थान है, इसलिए वो सच्चे देव की श्रेणी में नहीं आते। लोक में तो उनको परमात्मा ही माना गया ना, तो वो सच्चे देव की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। और निद्रा, नींद लेना भी परमात्मा का स्वरूप नहीं होता, क्योंकि साधु भी निद्रा को जीत लेते हैं। जो भगवान के आराधक हैं वो जब निद्रा को जीत लेते हैं तो फिर स्वयं भगवान निद्रा मग्न कैसे हो सकते हैं? निद्रा का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? 12वें गुणस्थान तक। और तीव्र निद्रा 6ठे गुणस्थान तक की ही होती है, जिससे निद्रा नाम का प्रमाद उत्पन्न होता है। उदय मात्र से प्रमाद नहीं होता, लेकिन छठे गुण स्थान में निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये पांच निद्राएं उदय में रहती है। और ऊपर के गुण स्थानों में केवल निद्रा और प्रचला, ये दो निद्राएं रहती है। बाकी तीन महानिद्राओं का उदय ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होता। और परमात्मा का गुणस्थान कौन सा है? कम से कम 13वां। 13वें गुणस्थान के नीचे परमात्मा नहीं होते, अंतरात्मा होते। तो फिर भगवान सो कैसे सकते हैं कि जिनको जगाना पड़े? भक्त मंदिर में पुकार करे, जागो हे। सुना है ना आपने? तो भक्त पुकार करेगी, हे भगवान जागो। भक्त पुकार कर रहा है, मुझ पर दया करो कृपा करो, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। तो ऐसे स्वरूप वाले जो देव हैं, जिनके अंदर परमात्मा के गुण तो नहीं है किंतु जो परमात्मा के आसन पर विराजमान है, उनको यहां पर कुत्सित देव कहा। कुदेव, उनको अपशब्द कहकर के उनको अपमानित करने की भावना नहीं है, किंतु उनके अंदर वो स्वरूप नहीं है जो सच्चे भगवान का होना चाहिए, इसलिए उसको ये कहा कुदेव। कु शब्द कहीं भी लगा दो तो उससे उसका विपरीत स्वरूप सामने आता है, कुमति। यानी जो मति सही नहीं है उसको क्या कहते हैं? कुमति। तो फिर जो परमात्मा सही परमात्मा नहीं है उनको क्या कहा? कुदेव। ऐसा भाव नहीं है इसमें कि उनको अपन नीचा दिखाना चाह रहे हो और कंपटीशन करके यहां पर महावीर भगवान को बड़ा बना दिया हो, ऐसा नहीं है। यहां तो चाहे महावीर स्वामी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, लेकिन कैसा स्वरूप होना चाहिए? कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, फिर कहते हैं कि वो फिर नाम कोई भी हो, उसमें हमें कोई पक्षपात नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, बस स्वरूप अगर उसका वो ऊपर की दो पंक्तियों वाला होगा तो फिर भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। बस ऐसे परमात्मा को अपन भगवान मानते हैं तो वो गृहित मिथ्यात्व का त्याग हो गया। अगर आप ऐसे परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते और किसी अन्य को परमात्मा मानते हैं, आपके घर में कई चित्र मिलेंगे, कई लोगों के घरों में, कुछ लोगों के यहां मूर्तियां भी मिलेंगी। कैसे चित्र हैं वो? वो चित्र कैसे हैं? वो इन सब लक्षणों से युक्त हैं, वनिता गदादि जुत। और देखिए उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, भगवान के वाहन भी हैं अन्य मतों में। वाहन भी कोई जीव है, तो जो सर्वशक्तिमान है, जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं, उनको वाहन पर जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसी कई बातें आती है, अब बारीकी से अगर चिंतन करो, निष्पक्ष होकर के, पक्षपात के साथ नहीं, निष्पक्ष होकर के। पक्षपात के साथ आप अगर चिंतन करेंगे तो फिर जैन भगवान का स्वरूप भी कहीं कहीं विकृत होने की संभावना है। यानी जैनेन्द्र भगवान के स्वरूप में भी कहीं पर आप दूषण पैदा कर सकते हो पक्षपात के साथ चिंतन करने पर, इसलिए निष्पक्ष होकर के देखो। एक बार जुलूस निकल रहा था, वहां पर अन्य मतियों ने प्रतिबंध लगवा दिया था कि नहीं, ये जुलूस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो फिर उन्होंने ये ज्ञापन दिया था कि इस जुलूस में जो जैनियों के भगवान शोभा यात्रा में निकलते हैं वो नंगे होते हैं। बोले बहुत बड़ी घटना थी ये। तो जब फिर जैनियों ने जाकर के वहां पर अपना स्पष्टीकरण दिया और फिर उनके विद्वानों के साथ भी बातचीत की, बोले कि तुम्हें नग्नता से आपत्ति है या विकार से आपत्ति है? जैन विद्वान ने पूछा, नग्नता घृणित होती है या विकार घृणित होता है? तो सामने वाला बोला कि विकार। तो फिर इनने जवाब दिया, फिर हमारे भगवान में विकार कहाँ है ये बता दो आप। जैनेन्द्र भगवान में कौन सा विकार है ये बताओ, उनकी ना आंखों में विकार है ना मुद्रा में विकार है, कहीं किसी अणु मात्र में भी विकार नहीं है भगवान में, तो फिर इस पर आपत्ति कैसे हो सकती है। और वास्तव में देखा जाए तो वस्त्र धारण करने पर भी जिसके मन में पाप है वो विकारी है, और निर्वस्त्र होते हुए भी हमारे भगवान और हमारे गुरु निर्विकार होने के कारण, देखो जो नग्नता विकार युक्त है वो अपूज्य है, निंदनीय है, और उस व्यक्ति को नंगा कहा जाता है जो अंदर से पापी है। भले ऊपर से कपड़ा पहने हो लेकिन उसको लोग नंगा बोलते हैं। और जो जैन साधु होते हैं और जिनेन्द्र भगवान होते हैं वो ऊपर से वस्त्र के धारी तो नहीं होते लेकिन अंदर से भी विकार मुक्त होते हैं, इसलिए वो नग्न होते हुए भी आराध्य हो जाते हैं, उनकी नग्नता पूज्य होती है। इसलिए नग्नता और नग्नता इन दोनों के फर्क को समझना आवश्यक है। पशुओं में भी नग्नता होती है, नरक में निवास करने वाले जो नारक जीव होते हैं वो भी नग्न रहते हैं। दव्वीण शैल नग्गा नारे तिरया, आचार्य कुनकुन स्वामी ने अष्टपावड़ में एक गाथा लिखी कि नरक में रहने वाले, तिरियंज गति में रहने वाले, ये सब द्रव्य से ऊपर से शरीर से तो नग्न है लेकिन फिर भी भाव सवण तणम न पत्ता, भाव से मुनिपने को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मुनि होने के लिए द्रव्य की नग्नता के साथ अंदर की भी कोई बहुत अद्भुत निर्विकारता अपेक्षित है। तो इन सब बातों के कारण फिर अंत में वो जुलूस निकला, लेकिन जुलूस निकलने पर भी जिनको मत द्वेष होता है, जैन मत के प्रति जिनको दुश्मनी जैसा भाव होता है, उन्होंने फिर वहां पर ऐसा निर्णय किया कि अपन जब जुलूस निकलेगा तो खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे, माने अपन इस रूप से जुलूस का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, सरकारी तौर पर तो जुलूस निकल रहा है, वहां से तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, इनके साथ पुलिस भी है और सारी व्यवस्था है, इसलिए अपन वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेंगे। तो फिर जब नगर के मुख्य चौराहे पर जुलूस पहुंचा, उस समय पंडित देवकी नंदन जी भी साथ में थे, दरभंगा नरेश भी साथ में थे, और बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी, और अच्छे गायक भोजक लोग भी वहां पर साथ में संगीत दे रहे थे। लेकिन जब वो जुलूस चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद मिले, तो भावनाओं को पीड़ा तो होती है कि देखो पंचम काल कैसा कलयुग आ गया, कि जिन जिनेन्द्र भगवान के चरणों में इंद्रादि देव भी नतमस्तक होकर पंच कल्याणकों का उत्सव मनाते थे, वहां पर इस श्री जी की शोभा यात्रा के उत्सव में कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इस रूप में बहिष्कार कर रहे हैं। अब इस पर तो कोई कानून नहीं लगा कि तुम्हें खिड़कियां और दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे, लेकिन इस बहिष्कार से मन को पीड़ा हुई। पर उस समय एक छोटा इंसान जिसको गवैया बोलते हैं, भोजक बोलते हैं, उसने आगे आकर के जैन धर्म की प्रभावना की। कैसी प्रभावना की? कि वो जन्मजात जैन नहीं होते भोजक लोग, लेकिन भोपाल के पास एक दोराहा नाम का गांव है, वहां पर निवास करने वाले वे भोजक हमेशा जैन भजन पूजन आदि ही करते हैं, और फिर वो उसके लिए कुछ न्योछावर और दान राशि भी ग्रहण करते हैं। तो वो भोजक जो वहां पर थे उन्होंने एक बुद्धजन का भजन गाने की अनुमति मांगी कि यहां पर जुलूस को रोक करके एक भजन गाने की मुझे अनुमति दी जाए, और मेरा विश्वास है कि खिड़कियां और दरवाजे जो बंद हो गई हैं ये खुल जाएंगे, क्योंकि अभी इनको भगवान का रूप दिख रहा है, भगवान का स्वरूप नहीं दिख रहा है। रूप को देख करके ये घृणा कर रहे हैं, स्वरूप को देखने वाला कभी भगवान से घृणा कर ही नहीं सकता। अब उस भोजक के अंदर ये विवेक था, उसने बहुत प्रार्थना कर करके आग्रह कर करके फिर अंत में पंचों को तैयार किया, और फिर और भी जो बड़े बड़े लोग थे, दरभंगा नरेश भी थे, तो फिर उनको भी निवेदन करके वहां पर कहा कि अभी 5 मिनट ये भजन गाना चाहता है, फिर यहाँ पर जुलूस को रोका जाएगा, अपन सब सुनेंगे। फिर उसने वो पेटी लेकर हारमोनियम लेकर के जब भजन गाना प्रारंभ किया तो उस भजन के शब्द क्या थे, शायद आपकी पुरानी जिनवाणियों में छपा हो भजन, बुध जन पक्षपात तजी देखो साचो देव कौन है या में। और जब वो भजन पूरा हुआ तो सारे खिड़की दरवाजे खुल गए और सब ने हाथ जोड़ करके जिनेंद्र भगवान की छवि को नमस्कार किया, श्री जी को। तो जब स्वरूप समझ में आ जाता है भगवान का तो अंदर की घृणा समाप्त हो जाती है और अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है। तो फिर भक्तों का क्या होगा? परमात्मा तो केवल स्वाधीन होने चाहिए, स्वाश्रित होने चाहिए। इसीलिए एक ही भाव स्तोत्र में कहा है, आहार्येभ्यः स्पृहयति परम यः स्वभावाद् हृद्यः शस्त्रग्राही भवति सततम् वैरिणायश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् तन्न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। आभूषणों से उसको अत्यधिक प्रेम होता है जो सुंदर नहीं है। आभूषणों से कौन प्रेम करता है ज्यादा? जो सुंदर नहीं है, क्योंकि आभूषण पहनने से वो अच्छा लगने लग जाता है। और हथियारों को वह धारण करता है जिसको शत्रुओं का खतरा होता है। पर हे भगवान, आप सच्चे परमात्मा हैं, आप सर्वांग सुंदर हैं और आपको शत्रुओं का कोई खतरा नहीं है। आपने अंदर के शत्रुओं को भी ध्वस्त कर डाला है, इसलिए आपको अस्त्र शस्त्र वस्त्रों की क्या आवश्यकता। यह है भगवान का सच्चा स्वरूप। अब श्वेतांबर मत में यह माना गया है कि भगवान के 35 अतिशय होते हैं। दिगंबर मान्यता में क्या है? 34 अतिशय। वहां 35वां अतिशय कौन सा है? केवल ज्ञान होने के बाद भगवान आभूषणों से मंडित दिखाई देते हैं। इसलिए मंदिरों में जो स्थापना होती है वहां पर आंखें आभूषण सब कुछ रहता है वहां पर। जो स्वयं सर्वांग सुंदर है उसको अतिशय द्वारा भी आभूषणों से मंडित दिखाई देने की क्या आवश्यकता है? वो इतने सुंदर है कि आभूषण लज्जित हो जाए उनके सामने, आभूषणों को शर्मिंदा होना पड़े, इतने सुंदर है भगवान। तो उनको इन अलंकारों की आभूषणों की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह भगवान का जो सही स्वरूप। और दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न आया था कि अगर दिगंबर जैन मंदिर न हो तो उन मंदिरों में जाकर अपन दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी भगवान है, महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर है। तो उसका समाधान क्या है कि वहां रूप भी भिन्न है और स्वरूप भी भिन्न है। स्वरूप में क्या भिन्नता है कि वहां पर भगवान की जो स्थापना है कवलाहारी के रूप में की गई है, यानी केवल ज्ञान के बाद भी वहां पर जिनेंद्र भगवान केवली भगवान हाथ से आहार ग्रहण करते हैं, जबकि दिगंबर मान्यता में आहार ग्राही नहीं होते जिनेंद्र भगवान, कवलाहारी कदापि नहीं होते, क्योंकि बहुत से उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। दोष कौन से उत्पन्न होते हैं कि एक तो उनका शरीर क्षायिक लाभ नाम की लब्धि के कारण, आत्मा में क्या है कि नौ केवल लब्धियां होती है। केवली भगवान के पास क्या होता है? उनको केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास 9 केवल लब्धियां हैं, केवल दर्शन केवल ज्ञान, ऐसी 9 केवल लब्धियां हैं। उन 9 केवल लब्धियों में एक होता है क्षायिक लाभ। क्षायिक लाभ का अर्थ क्या है? लाभांतराय का क्षय होने से उनको शरीर के योग्य परमाणुओं का निरंतर लाभ होता रहता है, उनको भोजन लेकर के शरीर को स्थिर रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, यदि वे भोजन ले ले तो संयम नष्ट हो जाएगा। और केवली भगवान यथाख्यात संयमी होते हैं। संयम कैसे नष्ट होगा? संयम इसलिए नष्ट होगा क्योंकि केवली भगवान सब कुछ देखते और जानते हैं, और सब कुछ देखते और जानते हुए भोजन करना संभव नहीं है। संभव है क्या? किसी का खून देखने के बाद, खून यानी मर्डर, या एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु देखने के बाद भोजन लेना कितना मुश्किल होता है? मान लो आप भोजन करने ही जा रहे, शादी की पार्टी में जा रहे कहीं, और रास्ते में कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लो कि जिसमें किसी की मृत्यु हो गई हो और सारे रास्ते पर उसका खून फैल गया हो, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, ऐसा कोई भयानक एक्सीडेंट देखने में आ जाए, उसके बाद आप जा पाएंगे वहां पर? और जाएंगे तो फिर क्या भोजन कर पाएंगे? आपको 3 दिन तक के वही दृश्य दिखता रहेगा, ये स्थिति हो जाएगी। और केवली भगवान, जब एक असंयमी मनुष्य किसी के दुख को इतनी अधिक मात्रा में देखने के बाद भोजन नहीं कर पाता, और मुनिराज भी जब मारो काटो ऐसे शब्द सुनते हैं तो कानों से सुनने मात्र पर वो अंतराय कर देते हैं, भोजन त्याग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर अगर कोई वो उधई मारवानी दवाई ले लो ऐसा कुछ बेचने वाले आते ना, वो आवाज अगर साधु आहार के समय सुन ले तो अंतराय हो जाए। तो साधु के अंदर इतनी दया होती है कि अगर ऐसी कुछ बातें कानों में सुनाई दे तो आहार त्याग दे। तो केवली भगवान तो तीनों लोक और तीनों काल की समस्त वेदनाओं को एक क्षण में एक साथ जानते हैं। इतनी वेदनाओं को जानते हुए अगर केवली भगवान आहार ले ले तो फिर साधु उनसे श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि साधु तो एक थोड़ी सी वेदना, चींटी अगर दब जाए किसी के पैर के नीचे तो आहार त्याग दे, और केवली भगवान नरकों की वेदनाओं को प्रत्यक्ष देखते जानते हुए भी भोजन कर ले, ये कैसा स्वरूप होगा भगवान का? आ रहा है समझ में? इसलिए कवलाहारी परमात्मा को अपने यहां पर शुद्ध वीतराग सच्चे देव के स्वरूप में नहीं गिना गया है। क्योंकि ये आपत्तिजनक बात आपकी सबकी समझ में आती है, वो अगर बैठेंगे तो वो सुन करके भी समझ जाएंगे कि हाँ ये तो बात आपत्तिजनक है। ये अब साधु को अंतरा आ जाता है वो छोड़ देते हैं, तो केवली भगवान को तो सब कुछ मालूम है, कौन सा अनाज अनीति से आ रहा है ये भी मालूम है। साधु को तो नहीं मालूम होगा कि आप 2 नंबर का खिला रहे हैं या 1 नंबर का। आप तो आहार जल शुद्धि बोल करके दे रहे हैं तो साधु तो विश्वास मान करके उसको शुद्ध समझ कर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन केवली भगवान तो एक एक बात जानते हैं कि यह आहार कैसे तैयार हुआ है और इसमें कितने दोष हैं, सब कुछ जानते हैं। साधुओं के लिए तो कहा है कि तुम्हें 46 दोषों को टालकर भोजन करना, और 32 अंतराय अगर उपस्थित हो जाए तो भोजन का त्याग कर देना। उस समय जो कौर आप चबा रहे हो उसको भी गले के नीचे नहीं घुटकना है, यहां तक के बताया शास्त्रों में कि अगर आप जो शोध रहे हैं उसमें अंतराय आ गया तो जो मुंह में ग्रास चबा रहे हैं उसको आप गले के नीचे नहीं ले सकते। वो अंतराय आते ही साथ जितना आधा चबाया हुआ है तो उसको भी बाहर करना पड़ेगा। जब साधुओं के लिए इतने कठोर कानून कायदे हैं तो फिर भगवान किस प्रकार भोजन ग्रहण कर सकते हैं? इसलिए उस स्वरूप को अपन भगवत स्वरूप नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि ये जो युक्ति संगत बातें हैं सारी, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। अपने को 18 दोषों से रहित स्वरूप कहीं भी मिल जाए, 18 दोषों से रहित स्वरूप होना चाहिए, तो उनके लिए बारंबार नमस्कार हो। जिसने राग द्वेष काम आदि, वो चाहे बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा कुछ भी रहो, लेकिन उनको नमस्कार हो। नमस्कार कब हो? जब ये स्वरूप हो तब। स्वरूप न हो और नमस्कार करो तो कितना दोष है? तो वो आपको याद है उस दिन जो श्लोक बताया था कि एक व्यसनी व्यक्ति 1,000,000 बार पाप करता है तो जितना उसको पाप लगता है उसको उससे 4 गुना पाप एक बार जिसके अंदर परमात्मा का स्वरूप नहीं है लेकिन परमात्मा के स्थान पर विराजमान हो गया उसको नमस्कार करने पर लगता है। अब सोच लो आप कहां कहां जा जाकर के किनको किनको नमस्कार कर बैठते हैं। दोस्ती में भी कई बार नमस्कार कर लेते हैं कि भाई वो कैसा क्या सोचेगा मेरा मित्र। तो मित्रता के नाते उनके पास जाकर के आप नमस्कार कर रहे हैं जिसमें परमात्मा का स्वरूप नहीं है, उनको नमस्कार कर रहे हैं आप। कुछ लोग मायाचारी करते हैं, वहां जाकर के दिखाते हैं कि हम नमस्कार कर रहे हैं और अंदर से नमो रेन्तारम नमो सिद्धारम नमाय, किसके सामने नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो आप? समझ रहे हैं कि आप बच गए क्या उस पाप से? आप अंदर से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो और फिर माथा किसके सामने झुका रहे हो? तो माने आपने नमोकार मंत्र को भी दूषित किया, और दूसरा क्या, आपने छल कपट किया वहां जाकर के, और फिर जिसके सामने नमस्कार नहीं करना था उसके सामने नमस्कार किया। आपका कोई मुसलमान मित्र यहां नमस्कार करता है? और फिर अगर किसी को बहुत आपत्ति हो कि भाई हम तो तुम्हारे यहां आकर के नमस्कार करते हो, तुम क्यों ऐसा भेदभाव करते हो भगवान में, तो उसका जवाब क्या है मालूम? उसका जवाब यह है कि ये अपनी अपनी आस्था की बात है। हमें जिस स्वरूप और रूप के प्रति आस्था है, हम उस रूप और स्वरूप को ही नमस्कार करते हैं। और जिसके प्रति आस्था नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका विरोध करते हैं या फिर हमारा उसके प्रति द्वेष हो, हमारे उसके प्रति घृणा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बस जिसके प्रति आस्था है उसको हम नमस्कार करते हैं। और फिर तुम भी ये तो बता दो, जैसे कोई अन्य मति आपसे पूछता है तो उसका आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि तुम ही ये बताओ कि जितने तुम्हारे मान्यता में, तुम्हारे मत में जितने नामी भक्त हुए हैं, वो एक के आराधक थे या अनेक के?